نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله إيمان صحة اور پھر اللہ کا گھر مسجد اور پھر ذکر اللہ یہ چار چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ مقام شکر ہے. اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے پاس الفاظ موجود نہیں کہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر سکے. ایمان کا ہونا, صحت کا ہونا, اللہ کے گھر کا ہونا اور پھر ذکر اللہ کا ہونا. ہوتا تو یہ ہے کہ چار چیزیں اکٹھی بہت کم نظر آتی ہیں, مگر جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور کرم ہو جائے ان کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. صحت ہے, ایمان ہے, تو صحت نہیں ہوتی انسان کے پاس ہزاروں لوگوں سے. صحت ہوتی آدمی کے پاس تو مسجد تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی انسان کو, ہزاروں چیزیں ایسی جو روک لیتی ہیں. اور اگر مسجد میں بھی کبھی آ جائے الحمدللہ, تو ضروری نہیں کہ ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے, کتنے لوگ محروم ہوتے ہیں. تو یہ جو چار چیزیں جمع ہو جانے والی چیز ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مقام شکر ہے انسان کے لیے, کیونکہ بندہ ایسی نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کی وقت کو نہیں پہچان سکتا. تو لاشعوری طور پر اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے, بس پہنچ کے بیٹھ گئے. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں مافیا, جو کچھ دنیا کے اندر ہے, جو بھی ہے, کیا کچھ دنیا کے اندر موجود ہے آپ دیکھ لیں, کیا کچھ نعمتیں ہوں گی, جو دنیاوی نعمتیں ہزاروں کروڑوں. فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مافیا, کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے سوائے اللہ کے ذکر کے.
سبحان اللہ,
کتنا بڑا قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, معمولی چیز نہیں ہے. بس عقل مند بار لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جس میں اللہ شعور دے دے, عقل دے دے. ہم جو ہیں دنیاوی چیزوں کو بہت بہتر, بڑا وقت, بڑی کوشش اور بڑا درجہ سمجھتے ہیں اس چیزوں میں, لیکن اللہ کے نبی نے دماغ سے ہماری یہ چیزوں کو ذیل کیا, نکالا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے, کیوں افضل ہے یہ؟ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس سے اللہ کا ذکر کیوں افضل ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں بیکار ہیں کن سوچ سے؟ وجہ ایک ساتھ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کتنی بھی بڑی چیز لے لیں آپ, کتنی بڑا رتبہ لے لیں, کوئی چیز لے لیں, اس کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے, آخر فنا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. लेकिन आखिरत का जो मज़ा है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जन्नत के हालात में से एक फल जो जन्नती खा लेगा उसका जायके नहीं ख़त्म होगा उसके ज़बान से, इतना ज़बरदस्त। जिस चीज़ में महब हो जाएगा वो, अल्लाह सुबहान तआला उस जायके को दोबारा कर देगा। यहाँ तो आप एक बहुत पसंद की चीज़ खा रहे हैं, चलें जो आपको पसंद है, मुँह में गया, ज़बान पर गया, जायका ख़त्म। उस जायके के लिए आदमी पेट भी भर जाता है तो फिर और खाता है कि वो जायका कायम रहे, किस तरह तसलसल चलता रहे उसका। बहुत सी मरगूब चीज़ें अल्लाह ने इंसान को दी हैं कि जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसकी वो चाहता है कि और हो, उस मज़े को और लेना चाहता है वो, लेकिन वो मज़ा उसको मिलता नहीं है। पूरी ज़िंदगी हमारी आप उठा कर देखें, ऊपर से लेके नीचे तक, बचपन से लेके जवानी सारा कोई नज़र आता है जहाँ कहीं रुक गया इंसान। कोई चीज़ भी ऐसी कि भाई यार जवानी में बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ है, रोक के दिखा दें, नहीं रुकती, रुक नहीं सकती। सब तो यही सारी चीज़ क्या है, ये फना है। और उधर क्या है, जिक्र को जो अफजल फरमाए वो क्या चीज़ है, वो बका है, उसके साथ तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बका में चली जाती है, कायम है, ख़त्म ही नहीं हो, उसका टेस्ट ही ख़त्म नहीं होता। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ज़बानों पर अल्लाह के नाम का टेस्ट चढ़ जाता है ना, फिर उनसे पूछें कि इसका टेस्ट है कैसे, कैसे कैसा टेस्ट है। गुजरी पहुँचते ना तो बैठे थे बड़े आराम से, तो किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इनके भाई मुझे जो इस वक्त मज़ा आ रहा है ना, मुझे सुकून है ना, अगर बादशाहों को पता चल जाए तो मुझ पर हमला शुरू कर दें लेने के लिए, ऐसा मज़ा है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी हम उस मज़े तक पहुंचा दे आदमी का, था मुझे तो मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो उसकी वैल्यू इंसान की नज़र में हो ना, कि छोटी छोटी बात पर हम अल्लाह का जिक्र छोड़ दें, छोटी छोटी नाराज़गी से हम अल्लाह के जिक्र मुँह मोड़ लें, थोड़ी सी बात उससे नाराज़ होकर भी हम जिक्र पर नहीं जाते। कोई आपके शेख हैं, कोई पीर साहब हैं, आपको तंबी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बस नखरे में आ जाने जी हमें हम ऐसे क्यों कह दिया फला, अब उसको गुस्से भी क्या करें, जिक्र को छोड़ दें। अल्लाह ये कदर है आज लोगों को अल्लाह के जिक्र की, यानी ये भी आसान है कि हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने शेख पे आसान करते हैं, अपने पीर पे। हम नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, पता लग जाएगा हम जिक्र नहीं करेंगे तो फिर इनको समझ आ जाएगी ये बात। इसके अंदर नादान है आदमी, यदि छोटा सा बच्चा वो भी है ऐसी हरकतें करता है, हम कितना महजूज होते हैं इस बात में, करता है छोटा बच्चा 2 साल का ऐसी हरकतें करता है, अच्छा मैम नहीं खाऊंगा पता चलेगा ना, मुँह डालना पड़ता है ज़बरदस्ती निभाला, ये करना पड़ता है, ऐसे ही है ना। हालांकि बेवकूफ़ बच्चा उसको क्या पता कितना नुकसान कर रहे हैं, हम तो बच्चों से भी चले गए कि आखिरत का हमें पता ही नहीं, हदीसें हैं, कुरान हैं, सब कुछ है, हमें यही नहीं पता कि अल्लाह के जिक्र का टेस्ट क्या है, और ये यही नहीं पता कि ये जो नेमत मिली है हमें अल्लाह के जिक्र करने की मेरे भाइयों, ये हमें किसी ताकत से नहीं मिली, किसी पैसे से नहीं मिली, किसी शऊर से नहीं मिली, किसी इलम से नहीं मिली, बड़े इलम वाले फिर रहे हैं भाई, किसी इलम से नहीं मिली, ये कहाँ से मिली है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मिली है। ले के दिखा दे, जिस पर अल्लाह का फजल होता है सिर्फ वही उसका नाम ले सकता है, औरत या मर्द। तो इस पर तो इतना शुक्र अल्लाह इंसान अदा करे लगा कि अल्लाह ने मुझ पर ये फजल कर दिया, किसी तरीके से कर दिया कि मैं उसका जिक्र करने वाला हो गया, जिक्र में बैठने वाला हो गया, उसका नाम लेने वाला हो गया। मामूली चीज़ है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह हदीस कितनी बड़ी हदीस है कि अल्लाह इतना प्यारा नाम जो तूने खुद रखा, जो तूने खुद रखा है, खुद ही मारूफ कराया, खुद ही कुरान में उतारा, और खुद ही उसको अता किया जिसको तू पसंद करता है, और अपने खजानों में से इसको महफूज किया, ये अल्लाह के अपने नाम की तारीफ फरमा रहे हैं, खुद अंदाजा लगे कितनी बड़ी चीज़ है। उसको मैं और आप लेने लगे तो ये हमारा जोर है, हमारी ताकत। मैंने बताया ना आपको कि कोई चीज़ नहीं जो अल्लाह के नाम या अल्लाह का जिक्र लेने के हमें आगे बढ़ा दे, बजुस किसके, अल्लाह के फजल से। करोड़ों लाखों बिलियन रुपया खर्च कर दें आप, आपको तौफीक नहीं होगी। बड़े बड़े हमने देखे लोग, बहुत बहुत उठते बैठते सफ़र करते थे, बड़े बड़े दौलतों के मालिक, बड़े बड़े स्टेटों के मालिक, बड़े बड़े अहदों के मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े स्टेटस के मालिक, जस्टिस, चीफ जस्टिस, जिंदगी में अल्लाह ने चीज दिखाई तो, लेकिन किस चीज से महरूम थे? अल्लाह के नाम से महरूम थे, जिक्र का पता ही नहीं। तो जो कुछ भी उनके पास, अल्लाह कहता है जो कुछ भी हो क्या है, अल्लाह है। और एक बात सुन ले कि भाई सुकून जो है, सुकून जो है इंसान को फना पे नहीं मिलता। जो खुद फना हो जाने वाली चीज, वो आपको सुकून क्या देगी? आपने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना ली, महल बना लिया, बड़े मजे से उस पर बिस्तर लगाया, अपनी पसंद का लगाया, सुकून लेने के लिए। अब ये हमारा कमरा होगा, यहाँ हम सोएंगे, फला होंगे। इत्तेफाक से तेज बारिश हुई और उस रात आपकी छत टपकनी शुरू हो गई। भागते फिरेंगे या नहीं? अक्सर देखो आप भागते फिर रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने गाड़ी ली, सब कुछ लिया, आप जिस ड्राइव करेंगे 35,000 की 37,000 की हमने गाड़ी ले ली है, अब ये करेंगे, वाकत में देंगे। अब बड़ी रोड पे निकाली, इतफाक से टायर पंचर हो गया, वो खड़े हैं, कोई आए तो कोई टायर उधर, मैं जाऊँ। और बारिश भी तेज़ हो गई और कोई आ ही नहीं रहा, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सुकून कहाँ चला गया? और यशी कहाँ चली गई? मुझे पता है और इधर गया अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह क्या हदीस है, चीज़ अजीब हदीस आ रही है अल्लाह का जिक्र। देखें एक इंसान के अंदर फितरत है, बड़ी अच्छी बात सुन रहे हो। क्या फितरत है? तरक्की की फितरत है। और मसलन आज कोई अगर किसी अहदे पर उतरेगा, यार मेरा अगला अहदा होना चाहिए, उस पर अगला अहदा होना चाहिए, मैं आज ये हूँ, अगला होना चाहिए, एक फितरत इंसान की। घर में आज ये नहीं, कल ये होना चाहिए, आज ये सुबह नहीं, कल ये सुबह होना चाहिए, आज ये पेपर नहीं। एक फितरत में इंसान की क्या है? तरक्की का है, तरक्की चाहता है। लेकिन कोई सबब उसका तरक्की नहीं पैदा कर सकता, असबाब है नहीं तरक्की का कोई भी। वाहिद एक चीज़ है, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, वाहिद एक चीज़ है जो हर वक्त इंसान को तरक्की पे रखता है, वो अल्लाह का जिक्र है। बताया कितनी बड़ी नेमत है, हमें इतनी तरक्की है अल्लाह के जिक्र के अंदर, इतनी तरक्की है कि अल्लाह अकबर, बिस्तर पे लेटा तब भी तरक्की है, नेमतें हैं तब भी तरक्की है, मुफलसी है तब भी तरक्की है, अमीर है तब भी तरक्की है, गरीब है तब भी तरक्की है। अल्लाह का जिक्र हर लम्हे उसकी तरक्की को रुझू पहुंचाता है। अल्लाह के फरमाया सुभान अल्लाह, क्या अजीब है कि भाई अगर उसका दिल अल्लाह के जिक्र से नूरानी हो गया और वो आराम से सोया हुआ है, तो वो उनसे भी अफजल हो जाता है कि जो गाफिल शब बेदार हैं और रात को जागने वाले हैं लेकिन उनके दिलों में जिक्र नहीं है। हदीस उनसे भी अफजल हो जाता है अल्लाह का जिक्र करने वाला, हालांकि सो रहा है वो जाग रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज है अल्लाह के जिक्र की, हर वक्त इंसान को तरक्की देता है, हर लम्हे। और तरक्की भी कौन सी, ये भी आप देख लो, इसका तरक्की का मियार ये नहीं है कि भाई दुनिया के अंदर तरक्की मिल रही है, इसका मियार तो इससे आगे है। हर लम्हे आखिरत की तरक्की देता है, जन्नत के मकामात को बुलंद करता है, हर लम्हे। हर अभी आप बैठे तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठे, और जब जिक्र होगा और जब जिक्र करने के बाद उठेंगे तो वो मुकाम नहीं होगा अल्लाह के फजल से, वो मुकाम नहीं होगा, बल्कि जितने कलमात और जो कुछ दुरूद शरीफ और जो आपने पढ़ा तो उससे इतने बुलंद मुकाम हो जाएंगे आपके, वो मुकाम जो हम ले रहे थे उससे कई दर्जे गुना आखिरत के हिसाब से बुलंद हो चुके होते। काश नफ्स और शैतान इंसान के साथ ना हो और ये गुना ना कराए, उसके तो फिर फरिश्ते आकर सलाम करना शुरू कर दें गलियों के अंदर। हदीस गली में इतना नूरानी हो जाता है अल्लाह के जिक्र से आते, जो कैफियत लेके अब इंसान बाहर निकलेगा इन कलमात के साथ। तो मैंने बताया ना चार नेमतें साथ जमा है इस वक्त, ईमान, सेहत, मस्जिद और जिक्र अल्लाह, जिसकी कोई मिसली नहीं है इस नेमत की, मुकाम शुक्र है मिसली नहीं है इसकी। और देते उसी को है अल्लाह ताला नेमत जिस पर अल्लाह का फजल होता है। कोई मुझे दिखा दी कोई बैठा है बहुत बड़े अहदे वाला, मुझे बताएं कोई आ रहा है यहाँ, कोई मिनिस्टर कोई छोड़ सकता है अपने ऑफिस को इस वक्त, वजीर आजम छोड़ सकता है कोई? आज तक मैंने देखा किसी वजीर आजम को अल्लाह के जिक्र में बैठा जिक्र कर रहा हूँ, कैबिनेट की मीटिंग है, फलां की मीटिंग है, अल्लाह अंदाजा लग गया। ये है अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, रूखी सूखी दे दे लेकिन अल्लाह का जिक्र जरूर दे दे, अल्लाह का जिक्र। ये चंद कलमात मैंने इसलिए कहे हैं आपसे, शैतान और नफ्स हमेशा इंसान को डाउन करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर आपको पूछ करता हूँ ऊपर की तरफ ये फिर ऊपर आए, इसके चक्कर में ना पड़े। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी नेमत है, और इससे बचने का एक तरीका है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो। अल्लाह नेमतों के बाद इंसान से ले भी लेता है, कुरान के अंदर बड़ी आयात है इस पर, जो नाशुकरी करती है कौम, जो इंसान अल्लाह उससे नेमत वापस कर लेता है। इस पर कभी नाशुकरी ना करो अल्लाह से करो। ये सारा वजूद ही, पूरी कायनात का जो वजूद चलता है ना दुनिया से आखिरत तक, ये अल्लाह के जिक्र पे चलता है। अगर हमसे नेमत अल्लाह पाक ले लिए, और फायद लेता ही किस चीज़ पर है वो, किसी नेमत को देकर एक ही चीज़ पे लेता है अल्लाह ताला, दूसरी चीज़ पे नहीं लेता। गुनाहों से नहीं लेगा, गुनाहों पे मोहल इंसान को मोहलत देता है, इस्तफाल का चांस देता है, तो खूब जिक्र माफ़ करता है। वो एक चीज़ से लेता है कि जब इंसान ना शुक्र हो जाए, उस नेमत पे ना शुक्र हो जाए, फजूल बकवास शुरू कर दे, फजूल तनाव, और बड़ा अपने आप को शौर समझने लगे, और उस पर यानी अल्लाह के बजाय शुक्र के हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का वजूद, जब अल्लाह के जिक्र बैठे बुजुर्गाने दीन की जिंदगी वहाँ पर देखे कि थकते ही नहीं थे वो, क्योंकि अल्लाह के जिक्र का जो शुक्र होता है ना, वो अजीब होता है, वो दिल से निकलती है शुक्र उसकी। और दिल का सबसे बड़ा इजहार जो है कहाँ से होता है, जबान से नहीं होता, आंखों से होना शुरू हो जाता है। गिरिया तारी रहता है उन पर, अक्सर मैं देखता था हजरत का गिरिया तारी रहता था, आपकी ऐनक जो होते हैं बिल्कुल भीगी रहती थी, क्या वजह है इसकी। बहुत देर में बात समझ आई कि ये जिक्र का शुक्र अदा फरमाते हैं, मेरा ये शुक्र है, हमें तो पता ही नहीं होता, जिक्र करके हम गए थे। इस पर इतना आदमी जितना झुकता है अल्लाह की इस नेमत पर, कोई नेमत अल्लाह दे दे, जितना झुकेगा, जितना डाउन जाएगा, अल्लाह करम है तेरा, इतना इतना शुक्र करेगा जबान बंद हो जाए, बस वजूद शुक्र बन जाए इंसान का। ज़रा घमंड ना हो, ज़रा तूफान ना मचाए, कभी कुछ ना करे। और एक जिक्र के बाद सोचे ना, ये भी याद रख, एक जिक्र के बाद कभी सोचे ना कि मुझे दूसरा जिक्र मैसर हो जाए। कदर हो जाती है ना आदमी को, इतना डरता है कि अल्लाह मुझसे ये नेमत ना चली जाए। उस बच्ची की तरह, किसी बच्चे को आप खिलौना दिला देना तो रात को उठ के पहले खिलौने को हाथ मारता है, बिस्तर में साथ लेके सोता है, क्योंकि उससे मोहब्बत हो जाती है खिलौने से। उसको ये वसवसा पैदा हो जाता है कि कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। छोटे बच्चे बोलने लगते हैं तो सवाल भी करते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी मेरी साइकिल, उसको लॉक लगा के रखेंगे घर में। आप तमाशे देखते होंगे, बच्चा जहन बड़ी अच्छा मैसेज दे रहा है, उसको खौफ है कि ये नेमत जो मुझसे दिए छीन ना जाए। ये खौफ हर वक्त अल्लाह ताला, मैं बेइंतहा ना शुक्र हूँ, मुझसे नेमत ना ले लेना, मुझसे जिक्र की नेमत मुझसे छीन ना लेना। याद रखना, इतना खौफ, इतना झुका रहा इंसान हर वक्त, क्योंकि जिक्र की नेमत गई फिर आदमी डब्बा है, कुछ भी करते फिरे आप, जो चाहे छलांग मारते फिरे, जो बताएं आपने आप पाटे खां बनाए हर लिहाज से, वो डुगडुगी बन जाता है। मैं आप हर हमारा डुगडुगी बन जाता है, उसके डुगडुगी समझते हैं ना, वो मदारी के पास होता है घुमाता है इस तरह बंदर को, उसके वो डुगडुगी बन जाता है। तो जिक्र का नूर है मेरे दोस्तों, जो इंसान को चमका के रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इस बड़ी अजीम रात के अंदर अल्लाह पाक हमें जिक्र की तौफीक नसीब फरमा रहा है। जंगल में ये आजिज ने अपने नालायकी और अपनी खिफत और अपनी शर्मिंदगी अल्लाह के सामने मिटाने के लिए आप जात को बिठा के गवाह बना के अपने लिए मैंने अर्ज़ की है कि अल्लाह पाक की नेमत हमसे ना छीनना, हमें हर हाल में। अभी दाऊद की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि देखें कितनी बड़ी ये नेमत है। अबू दाऊद की हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई तेरा बैठना भी घाटे में है और तेरा लेटना भी घाटे में है। क्यों? कि तेरा वो बैठना भी घाटे में जिसमें जिक्र ना हो, तेरा वो लेटना भी घाटे में जिसमें जिक्र ना हो। हर कैफियत जो इंसान की है ना, वो जिक्र के साथ है। मना क्या है? वो लॉस ही लॉस। लॉस किस चीज़ का? कि मैंने तुझे जिंदगी और सांस दी और तूने इसको बेकार कर दिया। तू ना समझ सका कि इसमें मेरे जिक्र तू करता तो फायदा उठा जाता, बहुत कुछ तूने कर लिया इसके साथ। इस सांस में तूने हजार दफा हजार चीजें कर ली होंगी, लेकिन तूने जाय कर दिया। बैठ के तू बहुत कुछ कर गया होगा, बैठ के तूने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन क्या है कि बैठना तेरा घाटे में अगर तूने मेरा जिक्र नहीं किया। अल्लाह को किस कदर मोहब्बत है अपने जिक्र के साथ, और क्या मुकाम है कायनात में इस अल्लाह के जिक्र का, और कितना मुकाम है अल्लाह के नजदीक जिक्र करने वाले लोगों का। शुक्र करना चाहिए नहीं? दिल को झुका लें, मामूली मस्जिद में आ रहे हो ना जिक्र के लिए, तो सोचा करो अल्लाह ताला वाकई कल तो मैं जिक्र में नहीं आ सका, पिछले जुम्मे भी नहीं आया, लेकिन कुछ जुम्मे में जो लोग थे गायब है, शैतान ने जकड़ लिया उनको, पकड़ लिया, कुछ लोग थे इस वक्त, आज वो नजर नहीं आ रहे। किसकी ताकत आ जाए, किसकी ताकत आ जाए, ऐसे ऐसे जाल फेंके हैं शैतान नफ्स ने, इंतहा कोई नहीं, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। यहाँ जब जिक्र करो, जिक्र के बाद आह करो, चीखो कि अल्लाह ताला पता नहीं मुझे दोबारा नसीब होगा भी नहीं होगा, तब जाके पता चलता है कि कोई चीज़ मिली हुई है। बाकी बहुत बड़ा कर्म हो जाता है कि हम अपनी गंदी जबान वजूद के साथ अल्लाह को याद करें। इसमें ना आदमी अकड़े, ना कुछ फंग मार मरे, बस मैं अब जिक्र पे नहीं आऊँगा, मैं फला नहीं करूँगा, ये सब शैतानी चीज़ होती है, शैतानी चीज़ होती है। तो इसी भाई अल्लाह वाले बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेमत दी है इस पर बेइंतहा शुक्र गुजार हो, बेइंतहा शुक्र गुजार हो, अल्लाह ताला शुक्र हो। जो शुक्र करता है, शुक्र तुम लाजिद अल्लाह को, शुक्र करके एक मजलिस को आप ख़त्म करेंगे, अल्लाह ताला से बेहतर मजलिस दोबारा आपको दे देंगे।